शामली कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसके गाल अब भी गुस्से और अपमान से लाल थे। विश्वनाथ की आखिरी बात, इसकी कीमत चुकानी होगी, अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे मुड़ गई। उसके कदम तेज थे, जैसे वो उस कमरे से नहीं बल्कि उस आदमी से दूर भागना चाहती हो जिसने कभी उसके दिल में सबसे खास जगह बनाई थी। दरवाजा खुला और अगले ही पल धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। कमरे में फिर से वही खामोशी उतर आई। विश्वनाथ कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी हुई थी जहां से अभी अभी शामली चली गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जाओ शामली। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें अजीब सी गहराई थी। जितना दूर जाना है चली जाओ। वो कुछ कदम चलकर अपनी कुर्सी के पास आया। लेकिन याद रखना, उसने हल्का सा सिर झुकाया, तुम वापस आओगी। उसकी उंगलियां कुर्सी के किनारे पर धीरे धीरे चल रही थीं। और जब तुम वापस आओगी, उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई, तब तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कमरे में उसकी आवाज गूंज कर रह गई, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गया, जैसे ये बातें उसने सिर्फ अपने दिल से कही हों। विश्वनाथ धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कमरे में एसी की हल्की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में अब कोई और ही आवाज चल रही थी, यादों की आवाज, 3 महीने पहले की यादें। उसकी बंद आंखों के सामने एक दृश्य धीरे धीरे उभरने लगा। रात का वक्त था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडक थी और सड़क लगभग खाली थी। एक काली कार शहर से थोड़ा दूर हाईवे पर खड़ी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बूंदें कार की छत और शीशों पर लगातार गिर रही थीं। लेकिन कार के बाहर 2 लोग खड़े थे, विश्वनाथ और शामली। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश उनके बालों से होकर चेहरे पर बह रही थी, लेकिन दोनों को जैसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। शामली हंस रही थी, वो अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश में घूम रही थी। आपको पता है, उसने हंसते हुए कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। विश्वनाथ कार के सहारे खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पता है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तभी तो तुम्हें यहां लेकर आया हूं। शामली ने उसकी तरफ देखा। मतलब? विश्वनाथ थोड़ा सा मुस्कुराया। मतलब ये कि वो धीरे धीरे उसके पास आया। आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। शामली की आंखों में शरारत चमकी। सच? विश्वनाथ ने सिर हिलाया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। शामली के बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। विश्वनाथ ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे से बाल हटाए। दोनों की आंखें एक पल के लिए एक दूसरे में ठहर गईं। माहौल अचानक शांत हो गया, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। अचानक गर्र, आसमान में जोर से बिजली कड़की। उसकी चमक ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। शामली डर गई। वो घबराकर तुरंत विश्वनाथ के करीब आ गई और अगले ही पल वो सीधे उसके सीने से आ लगी। उसके दोनों हाथ कसकर विश्वनाथ की शर्ट पकड़ चुके थे। विश्वनाथ एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। शामली का सिर उसके सीने से लगा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विश्वनाथ धीरे से मुस्कुराया। उसने बहुत हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। इतनी बहादुर बनती हो, उसने धीमे से कहा। और बिजली से डर गई? शामली ने उसके सीने से ही कहा। मुझे बिजली से नहीं, उसकी आवाज़ से डर लगता है। विश्वनाथ हल्का सा हंसा। उसने उसे और करीब खींच लिया। अब शामली लगभग पूरी तरह उसकी बाहों में थी। बारिश दोनों को भिगो रही थी, लेकिन उस पल में उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। शामली ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें मिली और उस पल दोनों की सांसें जैसे एक ही लय में चलने लगी। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है? शामली ने पूछा। क्या? विश्वनाथ की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। बारिश में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। शामली हल्का सा शर्माई। आप भी ना, उसने मुस्कुराकर कहा। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। कार की हेडलाइट सड़क पर पड़ रही थी। उस रोशनी में दोनों की भीगी हुई परछाइयां जमीन पर बन रही थीं और उस पल दुनिया जैसे सच में रुक गई थी। अचानक विश्वनाथ की आंखें खुल गईं। याद खत्म हो चुकी थी। वो फिर से उसी ऑफिस में बैठा था। कमरा वही था, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी बदल गई थी। उसने धीरे से गहरी सांस ली। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, शामली। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर वही सख्ती लौट आई। उसने कुर्सी से उठते हुए धीरे से कहा, तुम चाहे जितनी दूर चली जाओ। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। आखिर में तुम्हें वापस यहीं आना होगा। उसके होंठों पर फिर वही रहस्यमय मुस्कान उभरी और उस दिन उसने बहुत धीमे से कहा, हमारा हिसाब पूरा होगा। शामली तेजी से स्कूटर चलाते हुए घर की तरफ जा रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी ऑफिस का वही सीन घूम रहा था। विश्वनाथ का गुस्सा, उसका अचानक किया हुआ वो चुंबन और फिर उसका ठंडा लहजा, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने सिर झटका, जैसे उन यादों को दूर करना चाहती हो।
कुछ ही देर में वो अपने किराए के छोटे से मकान के सामने पहुंच गई। उसने स्कूटर रोका और जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा वो थोड़ा ठिठक गई। आंगन में दो आदमी कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें से एक मकान मालिक था और उनके साथ एक दूसरा आदमी बैठा था जो उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था। अंदर कमरे में उसकी माँ और पिता भी बैठे थे, मौसी मौसी जी। माहौल थोड़ा अजीब और गंभीर लग रहा था। श्यामली धीरे धीरे अंदर आई। उसे देखते ही उसकी माँ ने हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की। आ गई बेटा, मकान मालिक तुरंत बोला। अरे श्यामली आ गई, उनकी आवाज में बनावटी अपनापन था। श्यामली ने हल्का सा नमस्ते किया। नमस्ते। फिर उसकी नजर उनके साथ बैठे आदमी पर गई। वो आदमी लगभग 30-32 साल का होगा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी नजरें बार बार श्यामली को ही देख रही थीं। श्यामली को थोड़ा अजीब लगा। वो धीरे से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर मिश्रा जी ने खंगारते हुए बात शुरू की। दरअसल हम एक जरूरी बात लेकर आए थे। विश्वनाथ के पिता थोड़ा असहज दिख रहे थे। मकान मालिक ने अपने पास बैठे आदमी की तरफ इशारा किया। ये मेरा छोटा भाई है सुरेश। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया और सिर झुका दिया। मकान मालिक आगे बोला, असल में हम सोच रहे थे कि अगर आप लोगों को ठीक लगे, उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, तो सुरेश और श्यामली का रिश्ता कर दिया जाए। ये सुनते ही कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। श्यामली जैसे पत्थर बन गई। उसने तुरंत अपने माता पिता की तरफ देखा। उसकी माँ के चेहरे पर साफ चिंता थी। मौसा मौसी गुस्से में आ गए और उसके पिता गहरी सोच में डूबे हुए थे। घर में कुछ दिनों से पैसों और समाज की बातों को लेकर पहले ही परेशानी चल रही थी और अब अचानक ये रिश्ता जैसे सबको एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा कर रहा था।